मोको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास रे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
मन की साधना कैसे करें?
देवियों भाइयों,
मैंने आपको शरीर की साधना के दो माध्यम बताए हैं, आहार और विहार। वैसे ही मन की साधना के भी दो माध्यम हैं, एक का नाम है विवेक और दूसरे का नाम है साहस। साहस और विवेक, इनकी जितनी मात्रा हम अपने भीतर इकट्ठी करते हुए चले जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन विभूतियों से, समृद्धियों से, वृद्धियों से और सिद्धियों से भरता हुआ चला जाता है।
मित्रों, इस संबंध में मैं आपको इतिहास की बात बताना चाहता हूँ, कुछ घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। विवेकवान की रीति माइनस नीति। समर्थ गुरु रामदास के ब्याह की तैयारियां चल रही थी। बुआ ने कहा कि उनका ब्याह तो जरूर होना चाहिए। अम्मा ने कहा, मेरे बेटे का ब्याह नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। ढोलक बजाई जा रही थी और हल्दी चढ़ाई जा रही थी। घोड़ी चढ़ाने के लिए बारात निकाली और बारात वहां जा पहुंची बेटी वालों के यहाँ।
बेटी वालों के यहाँ मंडप सजाया गया।
समर्थ गुरु रामदास ब्याह करने के लिए वहां जा पहुंचे। एक पुरोहित ने कहा कि महाराज, यहाँ ब्याह करने पर एक आवाज लगाई जाती है। उन्होंने कहा, लड़का लड़की सावधान।
लड़के ने कहा कि पल भर की देरी है, लेकिन सावधान क्यों कहा गया?
अरे, जीवन के मोल का यही अंत। चार छोकरी चार छोकरे और एक पंडित नाइन। नौ ग्रह, नौ की दुहाई, नौ तरह की बीमारियां। मर जाएगा, अरे अभागे।
दो तरीके से मारा जाएगा,
इसीलिए भगवान चिल्ला रहा है, सावधान सावधान।
अरे, दोनों तरफ की दिशाएं क्या देख रहा है?
एक तरफ चल और समर्थ गुरु रामदास ये भागे वो भागे।
लोगों ने बाजा बजाना बंद कर दिया। वह गया सो गया। बुआ ने कहा बेवकूफ, अम्मा ने कहा पागल, बाप ने कहा सिरफिरा, रिश्तेदारों ने कहा कि उल्लू है। सबने जाने क्या क्या कहा, दुनिया वाले क्या क्या कहते हैं, लेकिन विवेकवानों की विचार करने की शैली अलग होती है। वे अपना रास्ता अलग बनाते हैं और अपने रास्ते पर आप चला करते हैं।
पात्रता की अनिवार्यता। मित्रों, जो विवेकवान लोग अपने रास्ते पर चले हैं, वे संसार के इतिहास में उज्ज्वल तारे की तरह टिमटिमाते रहे हैं और टिमटिमाते रहेंगे। यह परंपराएं पहले भी चली थीं और आगे भी चलती रहेंगी। मैंने आपको मन की, मस्तिष्क की, सूक्ष्म शरीर की उपासना के साथ साधना करने की विधि पहले भी बताई थी और विवेकशीलता को उसका एक अंग बताया था। एक दूसरा अंग है पात्रता का विकास, व्यक्तित्व का विकास। इसके अभाव में सारी साधना उपासना निष्फल चली जाती है। एक बड़े संभ्रांत व्यक्ति ने सुन रखा था कि संसार में सबसे बड़ा लाभदायक काम भगवान का प्यार प्राप्त करना है। भगवान सारी दुनिया का स्वामी है, मालिक है।
सारी संपदाएं और सारी सुविधाएं उसके एक इशारे पर चलती रहती हैं। मनुष्य को भी जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, जिन लाभों की जरूरत है, जिन वस्तुओं की जरूरत है, वह भगवान के एक कृपांश के ऊपर, भगवान के एक इशारे के ऊपर, इशारे की एक किरण के ऊपर टिके हुए हैं।
भगवान अगर हमसे नाराज हो जाए तो हमारा अच्छा भला शरीर देखते ही देखते बर्बाद हो जाए, गठिया आदि लग जाए, लकवा आदि हो जाए,
हमारा सारा खाना पीना भी बट्टे खाते में चला जाए,
हमारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार चली जाए। 16 वर्ष तक पढ़ाई की, एमए
की पढ़ाई की और डिवीजन खराब हो जाए, थर्ड डिवीजन पास हो जाए और नौकरी के लिए जगह न मिले,
चपरासी के लिए मारा मारा फिरना पड़े, तब भगवान की एक कृपा का कण यदि हमारे विरुद्ध हो जाए तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। कैसे मिले भगवान का प्यार? उस व्यक्ति को मालूम था कि भगवान का प्यार पाना और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है।
उस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपने समय के सबसे बड़े उदार संत और भगवान के सबसे बड़े भक्त सुकरात के पास वह व्यक्ति गया और कहने लगा कि भगवान,
मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं और भगवान का साक्षात्कार कर सकूं,
भगवान तक पहुंच सकूं।
सुकरात चुप हो गए।
उन्होंने कहा कि फिर कभी देखा जाएगा।
कई दिनों बाद वह व्यक्ति फिर आया। उसने कहा, भगवान, आपने भगवान को देखा है और भगवान का प्यार पाया है, क्या आप मुझे भी प्राप्त करा सकेंगे? क्या भगवान का अनुग्रह मेरे ऊपर न होगा? सुकरात ने कहा, अच्छा, तुम कल आना और मेरी एक सेवा करना, फिर मैं तुम्हें उसका मार्गदर्शन करूंगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचा। सुकरात ने मिट्टी का कच्चा वाला एक घड़ा पहले से ही मंगा कर रखा था।
वह पकाया नहीं गया था, वरन मिट्टी का बना हुआ कच्चा था।
सुकरात ने कहा, बच्चे जाओ मेरे लिए एक घड़ा पानी लाओ और मैं उससे स्नान कर लूं, पानी पी लूं, पीछे मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। घड़ा पक्का होना चाहिए। कच्चा घड़ा लेकर वह व्यक्ति कुएं पर गया, रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके उसको कुएं में डुबोया। खींचते खींचते घड़े का बहुत सारा हिस्सा, कोना टूट फूट गया।
किसी तरीके से थोड़ा बहुत पानी लेकर वह घड़ा ऊपर आया। घड़े को उसने सिर पर रखा, हाथ पर रखा।
सुकरात के पास उसे लेकर जब तक वह पहुंचा, मिट्टी का वह घड़ा बिखर गया। उसने सुकरात से कहा कि भगवन,
जो घड़ा आपने मुझे पानी भरने के लिए दिया था वह रास्ते में ही बिखर गया।
उन्होंने कहा, ठीक यही फिलॉसफी भगवान का प्यार प्राप्त करने और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने की है। कच्चा घड़ा अपने भीतर पानी को धारण नहीं कर सका। उसके लिए जरूरत इस बात की पड़ती है कि घड़ा पक्का हो। अगर हमारे पास पक्का घड़ा है तो पानी भर जाएगा, ठंडा रहेगा, बेतकल्लुफ खड़ा रहेगा और पानी हमको मिल जाएगा। अगर घड़ा कच्चा है तो पानी बिखर जाएगा। सुकरात ने यह बात उस व्यक्ति से कही। संव्याप्त भ्रांतियां। मित्रों, भगवान को अपने भीतर धारण करने के लिए पक्का अर्थात चरित्रवान, पक्का अर्थात त्यागी, पक्का अर्थात निष्ठावान, पक्का अर्थात व्यक्तित्व से संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। यही है भगवान की पूजा उपासना के माध्यम।
लेकिन क्या किया जाए, लोगों ने पिछले दिनों हमको गलत बातें बता दी, गलत नियम सिखा दिए कि पूजा उपासना के खेल जैसे कर्मकांड भगवान का प्यार प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा सकते हैं।
हमको अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता नहीं है।
हमको अपने आप को महान बनाने की आवश्यकता नहीं है।
हम केवल थोड़े से कर्मकांड कर लिया करें तो हमको शांति मिल जाएगी और हमको भगवान का अनुग्रह मिल जाएगा।
इस अज्ञान और भ्रम ने हमारा रास्ता भटका दिया और हम एक मंजिल पर चल सकते थे, थोड़ी दूर तक पहुंच सकते थे, उससे महरूम और वंचित रह गए।
तीर्थ स्नान से मिलेगी मन की शांति। मित्रों, एक बार ऐसा हुआ, एक था मल्लाह।
बहुत डहकी बैठा हुआ था और कह रहा था कि मेरे मन में बड़ी अशांति है और मुझे बड़ा डैक है।
अब मुझे भगवान की तरफ चलना चाहिए और भगवान से शांति प्राप्ति करके लानी चाहिए।
क्या किया जाए, क्या न किया जाए, उसके जी में आया कि तीर्थयात्रा के लिए चलना चाहिए और भगवान के दर्शन करना चाहिए।
उसकी स्त्री केशिका ने कहा कि पतिदेव, तीर्थयात्रा जाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तो अपने भीतर भरी हुई पड़ी है।
जब तक हम अपने भीतर के कपाट नहीं खोलेंगे, जब तक अपनी अंतरंग शांति के द्वार नहीं खोलेंगे, तब तक किस तरीके से आपको शांति मिल सकती है?
बाहर शांति है कहाँ?
जिसको तलाश करने के लिए आप जा रहे हैं, उसने कहना नहीं माना।
उसने कहा कि मैं तो तीर्थयात्रा के लिए जाऊंगा और वहां से शांति लेकर के आऊंगा। मैं तो गंगा स्नान करूंगा और मैं तो जगन्नाथपुरी जाऊंगा और वहां से शांति लेकर के आऊंगा। स्त्री ने मना किया, लेकिन उसका पति बड़ा दुखी था और खिन्न था और उसको बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा थी। पत्नी ने दी शिक्षा। वह तीर्थयात्रा की तैयारियां करने लगा। उसकी स्त्री केशिका भी साथ जाने के लिए तैयार हो गई।
उसने एक रूमाल में चार बैंगन बांधकर रख दिए और जहां जहां पतिदेव ने तीर्थयात्रा की, वहां वहां वह स्वयं भी नहाए और पानी में बैंगनों को भी स्नान कराया। जहां जहां दर्शन के लिए पतिदेव गए, वहां स्वयं भी दर्शन किया और उन चार बैंगनों को भी दर्शन कराया।
सारे के सारे तीर्थ यात्रा करने के बाद उसका पति भी आ गया और केशिका भी आ गई।
जब घर आकर के बैठे, तब क्या हुआ कि उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और वे चार बैंगन जो थे, जो कि सारे के सारे तीर्थों की यात्रा कर चुके थे और सब नदियों में स्नान कर चुके थे, उन बैंगनों की उसने साग बनाया।
साग बनाकर पतिदेव की थाली में परोसकर रख दिया तो पतिदेव को बड़ी दुर्गंध आई। पतिदेव ने कहा, अरे भगवान,
तूने यह क्या रख दिया? बदबू के मारे मेरी नाक सड़ी जा रही है और मुझे उल्टी होने वाली है। पत्नी ने कहा कि ये वह बैंगन है जो चारों धाम की यात्रा करके आए हैं। ये वह बैंगन है जो भगवान के जितने भी सारे तीर्थ हैं, उनके दर्शन करके आए हैं।
इनमें तो सुगंध होनी चाहिए थी,
इनमें तो स्वाद होना चाहिए था। उसने कहा, परंतु इनमें न तो सुगंध है और न स्वाद है, तो मैं किस तरीके से मान लूं?
पत्नी ने कहा कि जब ये बैंगन सुगंध न प्राप्त कर सके, खुशबू प्राप्त न कर सके और स्वाद न प्राप्त कर सके, तो फिर यह तीर्थयात्रा आपको शांति दे पाएंगे क्या? भगवान के दर्शन कर्मकांड आपको शांति दे पाएंगे क्या? मल्लाह के हृदय कपाट खुल गए और उसने अपने भीतर भगवान को तलाश करना शुरू कर दिया और उसको शांति मिली।
गहराई में प्रवेश करें।
मित्रों, भगवान जिसके आधार पर यह सारा विश्व टिका हुआ है और मानव की सारी उन्नति उसके कृपा कटाक्ष के ऊपर अवलंबित है, उसको हमको तलाश करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए।
मेरे जीवन का सारा समय इसी काम में समाप्त हो गया और मेरी 60 साल की जिंदगी सिर्फ इसी काम में समाप्त हो गई।
भगवान कहाँ है
और भगवान को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, हमको इसके बारे में थोड़ी गहराई तक जाना पड़ेगा, जैसे कि मुझे मेरे गुरुजी ने गहराई में धकेलने की कोशिश की।
मैं चाहता हूँ कि आपको भी गहराई तक धकेल दूँ ताकि आप वास्तविकता को समझ सकें। मित्रों,
एक बार ऐसा हुआ कि भगवान जी की इच्छा हुई कि मेरा प्यारा मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करता है और उसके पास मैं चलूं, उसके पास रहूं और उसकी खोज खबर लिया करूं, उसको शिक्षा दिया करूं। मैंने बड़ी उम्मीदों और तमन्नाओं से उसको बनाया था।
मैं उसको रास्ता बताऊंगा, उसको उसके कर्तव्य बताऊंगा और उसको यह बताऊंगा कि मनुष्य का जीवन कितना महान है और मनुष्य के जीवन से क्या किया जा सकता है।
भगवान जो कार्य स्वयं करता है उसको मानव भी स्वयं कर सकता है। मैं जा करके ऐसा शिक्षण मनुष्य को दूंगा।
भगवान आए धरती पर। इसी उद्देश्य से भगवान पृथ्वी पर आने की तैयारियां करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे
आप तो बेकार परेशान हो रहे हैं।
मनुष्य तो आपके काम का रहा नहीं।
मनुष्य बड़ा चालाक हो गया है और मनुष्य बहुत छोटा हो गया है, बड़ा संकीर्ण हो गया है।
उसके पास जाने से आपको कोई फायदा नहीं। भगवान ने कहा, नहीं, मनुष्य तो हमारा बच्चा है। हम तो जाएंगे और मनुष्य के पास रहेंगे और उसको रास्ता बताएंगे और कर्तव्य बताएंगे। भगवान जी बैकुंठलोक से रवाना हो गए और पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर निवास करने लगे।
लोगों से कहा, मनुष्यों, हमने तुमको बनाया है और एक काम के लिए बनाया है। उस काम के लिए हम आपको शिक्षा देंगे और आपके दुखों को दूर करेंगे,
शांति के लिए आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने मनुष्यों से यह बात कही। मनुष्य आए और भगवान के पास घूमने लगे, चक्कर काटने लगे। भगवान उनको ज्ञान की बातें बताने लगे, शिक्षा की बात बताने लगे, आत्मकल्याण की बात बताने लगे, परोपकार की बात बताने लगे, सेवा की बात बताने लगे।
लेकिन मनुष्यों ने उसको सुनने से इनकार कर दिया।
मनोकामनाओं की लिस्ट। मनुष्यों ने कहा, भगवान जी,
इन बातों की हमको जरूरत नहीं है। तो फिर किस बात की जरूरत है? उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप तो बताएं कि हमको खांसी आ जाती है, हमको बुखार आ जाता है, आप हमारा बुखार अच्छा कर दीजिए। किसी ने कहा कि महाराज जी,
हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है और आप मुकदमा ठीक करा दीजिए।
किसी ने कहा कि महाराज जी, हमारा ब्याह नहीं हुआ है और हमारी इतनी उम्र हो गई और हमको अच्छी से अच्छी लड़की नहीं मिलती। किसी ने कहा कि महाराज जी, हमारी कन्या 22 साल की हो गई है,
हम उसके लिए लड़का ढूंढते हैं, मिलता नहीं, लोग ज्यादा से ज्यादा दहेज मांगते हैं।
किसी ने कहा कि महाराज जी, हमारा ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए।
भगवान ने कहा, लोगो,
यह तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। लोगों ने कहा कि महाराज जी, यही आपके काम है और आप ही यह काम किया कीजिए।
भगवान को बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने कहा कि हम ज्ञान देने के लिए आए थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताने के लिए आए थे और शांति देने के लिए आए थे और आगे बढ़ाने के लिए आए थे, और ये कमभक्त ऐसे बेवकूफ हैं कि अपने दैनिक जीवन की जो छोटी मोटी सी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, जिनको कि आदमी अपनी अकल को सही रख करके आसानी से पूरी कर सकता है, समस्याएं हल कर सकता है, उसको हमसे मांगता है।
ये आदमी बड़े खराब हैं। भगवान नाराज हो गए और उन्होंने अपना बिस्तर उठाया, अपना सामान उठाया, अटैची उठाई और चलने लगे। पहाड़ पर प्रभु, वहां भी पहुंचा मानव। भगवान जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने विचार किया कि ऐसी जगह चलना चाहिए जहां कोई पहुंच न सके। सो वे पहाड़ के ऊपर चले गए। वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे।
लोगों ने कहा कि भगवान जी को तलाश करना चाहिए और वहां चलना चाहिए और अपनी दिक्कतें बतानी चाहिए और वहीं से आशीर्वाद लाना चाहिए।
भगवान जी कैलाश पर्वत पर मानसरोवर के पास बैठे हुए थे। बस लोगों ने रास्ता ढूंढा।
कौन सा रास्ता है? नैनीताल के पास से जाता है, अल्मोड़ा के पास से जाता है।
तिब्बत तक का रास्ता ढूंढते हुए पहाड़ों पर होते हुए कैलाश पर्वत तक वे जा पहुंचे। भगवान ने कहा कि धक्के खाकर के मनुष्य मेरे पास आ गया, चलो अच्छा हुआ। भगवान ने कहा, बच्चों,
तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं और सारी सुविधाएं हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर दबाकर रख दी हैं। तुमको उन्हें अपने भीतर तलाश करना चाहिए और तुमको अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए।
जैसे ही तुम अपना जीवन अच्छा बनाओगे, सारी रिद्धियां और सिद्धियां, सारे सुख और सारी सुविधाएं अनायास ही आती हुई चली आएंगी। लोगों ने कहा कि महाराज जी,
यह तो बड़े झगड़े का काम है और बहुत झंझट का काम है। हम अपने आप को कैसे सिद्ध करेंगे और कैसे मन को नियंत्रित करेंगे और कैसे इंद्रियों का निग्रह करेंगे? सेवा के लिए हम मन कहाँ से लाएंगे और ऐसे कैसे करेंगे? यह हमसे नहीं हो सकता और हम नहीं करेंगे।
भगवान ने कहा, फिर क्या करोगे? हम तो महाराज जी बस आपका आशीर्वाद मांगेंगे और अपना फायदा कराएंगे आपसे।
क्षुद्र और क्षुद्रतम हम।
भगवान जी को फिर गुस्सा आया।
उन्होंने कहा कि हम इसीलिए तो भाग करके यहाँ आए थे। हमने तुमको सारी विद्याएं दे दी, मजबूत कलाइयां दे दी, अकल दे दी, सब काम कर दिया और इस लायक बना दिया कि अपने इस शरीर की जरूरतों को स्वयं पूरा कर लिया करो। और तुम हो कि शरीर की जरूरतों को भी पूरा कराने के लिए हमारे पास चले आते हो। यह बड़ी खराब बात है।
हम तो तुम्हारी आत्मा को बढ़ाएंगे।
लोगों ने कहा कि आत्मा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम तो आपसे अपने शरीर की चीजों को मांगेंगे।
भगवान जी को फिर नाराजगी हुई और वे फिर वहां से भाग खड़े हुए। समुद्र में पहुंचे भगवान। इस बार भगवान वहां से भागकर समुद्र में जा पहुंचे
और कहा कि देखें अब यहां मनुष्य कहां से आ जाएंगे।
द्वारिका के पास बेत द्वारिका नाम की एक जगह है, बस भगवान वहां जा पहुंचे।
वह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ पड़ा था। चारों ओर समुद्र था और बीच में एक टापू था।
बस भगवान जी वहां बैठ गए और वहीं रहने लगे।
उन्होंने कहा कि देखें अब हमारे पास मनुष्य कहां से आ जाएगा,
अब वह हमको खामखवाह तंग नहीं करेगा।
एक बार उनका मन आया कि अपने घर चलना चाहिए लक्ष्मी जी के पास, पर यह अपना वीक पॉइंट था क्योंकि लक्ष्मी जी से यह कह करके आए थे कि हम मनुष्यों के पास रहेंगे और लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मनुष्य बड़े निकम्मे हो गए हैं और अपने ही धंधे में फंस गए हैं। वे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गए हैं। वे आपकी बात सुनेंगे नहीं।
एक बार उन्होंने फिर सोचा कि चलो लक्ष्मी जी के पास चलें, मनुष्यों को छोड़ दें। फिर उन्होंने कहा कि भाई
यह तो बड़े शर्म की बात है और उनके सामने नाक नीची करने से क्या फायदा,
यही रहना चाहिए। भगवान जी बेत द्वारिका में रहने लगे।
पशुपेश में भगवान।
मित्रों,
लोगों को जब यह पता चला कि भगवान जी द्वारिका में निवास करते हैं तो उन्होंने नावें बना ली, बोट बना लिए और भाग भाग कर वहीं जा पहुंचे।
भगवान ने कहा अब क्या करना चाहिए।
पहाड़ पर वे छोड़ने वाले नहीं, जमीन पर वे छोड़ने वाले नहीं, समुद्र में भागकर आए तो भी इनसे पिंड नहीं छूटा।
अब क्या करना चाहिए। भगवान जी बहुत दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और उनकी आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा भाइयों,
घर जाते हैं तो ठिकाना नहीं और इनके पास रहते हैं तो ठिकाना नहीं। अब क्या करना चाहिए। अपनी कोई जगह बनानी चाहिए जहां हम पृथ्वी पर भी बने रहें और लक्ष्मी जी के सामने बेइज्जती भी न हो। हम जमीन पर भी बने रहें और जो अच्छे मनुष्य हमको पाना चाहें तो आसानी से पा भी सकें।
ऐसी जगह भी न चुनी जाए कि कोई अच्छा मनुष्य चाहता हो कि हमको भगवान मिल जाए और हम उसे मिल न सकें।
ऐसी जगह कहाँ तलाश करें।
विवेक का हो जागरण तो हो कल्याण।
इससे पूर्व के अंक में आप पढ़ चुके हैं कि साहस और विवेक, पात्रता संवर्धन तथा आत्मचिंतन, जिसने इन चार पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया उसका जीवन बदलता चला गया। जिसने इनकी उपेक्षा की वह पिछड़ता चला गया।
हम गहराई तक प्रवेश करें और ढूंढें अनंत शक्ति एवं शांति के स्रोत को। इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने एक रोचक कथानक सुनाया है जिसका आधा हिस्सा आप पढ़ चुके हैं। भगवान ज्ञान बांटने धरती पर आए पर मनोकामनाओं की लिस्ट लिए आदमी उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। घबराए वे पहाड़ पर पहुंचे, मनुष्य वहां भी चला गया।
क्षुद्र मनुष्य समुद्र में भी पहुंच गया जब उसे पता चला कि अब भगवान का डेरा वहां है।
असमंजस में पड़े भगवान को अब एक ही सहारा था। इस कथानक का व इस व्याख्यान का भी अब उत्तराध आगे पड़े। देवर्षि से भेंट। मित्रों, भगवान जी ऐसी एकांत जगह तलाश करने के लिए सिर खुजला रहे थे जहां कोई पहुंच न सके।
इतनी देर में वीणा बजाते हुए कहीं से नारद जी आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आज आपको क्या हुआ, कोई जुकाम बुखार हो गया है क्या।
भगवान जी ने कहा नहीं नारद जी, जुकाम बुखार तो कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ।
कोई लड़ाई झगड़ा हुआ।
नहीं,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ तो फिर किस्सा क्या है, आप डवकी क्यों बैठे हुए हैं।
भगवान ने कहा कि हम लोगों के पास आए थे और उन्हें कल्याण का रास्ता बताना चाहते थे, उन्हें सुख और शांति का मार्ग बताना चाहते थे, उनको स्वर्ग और मुक्ति का आनंद देना चाहते थे और उनको महामानव बनाना चाहते थे।
हम उनको यह बताना चाहते थे कि इंसान भगवान का बेटा है और भगवान के तरीके से उसको दुनिया में शान से रहना चाहिए।
भगवान के पास जो आनंद है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। सही स्थान की तलाश। भगवान ने कहा नारद जी, हम इनको यही सिखाने के लिए आए थे, लेकिन ये मनुष्य बड़े निकम्मे हैं और बड़े स्वार्थी हैं।
ये केवल छोटी छोटी चीजों के लिए ख्वाहिश करते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के लिए इनका मन नहीं है। मैं इनके पास नहीं रहूंगा,
भाग जाऊंगा और इनसे दूर रहूंगा, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाना चाहता।
नारद जी, मैं ऐसी जगह तलाश करना चाहता हूँ जहाँ मैं बना भी रहूँ, पृथ्वी पर भी रहूँ और मेरा मनुष्यों से संबंध भी बना रहे,
लेकिन मैं दिखाई भी न पड़ूं।
ऐसी जगह मुझे चाहिए जो दिखाई न पड़े। समुद्र में गया तो वहां भी लोगों ने पकड़ लिया, यहां भी लोगों ने पकड़ लिया। पहाड़ पर गया तो वहां भी लोगों ने पकड़ लिया और जमीन पर था तो वहां भी मुझे पकड़ लिया। अब अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो ऐसी जगह बताओ जहां मैं आराम से छिपा बैठा रहूं और कोई आदमी चाहे तो आसानी से वह मुझ तक पहुंच सके। ऐसा भी न हो जाए कि चाहने वाला कोई आदमी पहुंच भी न सके और ऐसा भी न हो कि लोग मुझे आसानी से पकड़ लें और तंग करने लगें।
ऐसा स्थान बता दीजिए।
आज तक वहीं पर है भगवान।
नारद जी ने कहा, वाह,
आपको इतना भी नहीं मालूम, इतनी बढ़िया जगह है, मैं अभी आपको बताता हूँ।
भगवान जी को नारद जी ने जगह बता दी और भगवान जी उस दिन के बाद से आज तक उसी जगह पर विराजमान हैं।
न वहां से हटे न वहां से चले, बिल्कुल वहीं बैठे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं और वहां आसानी से आदमी पहुंच सकता है और जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है, भगवान से वार्तालाप कर सकता है और भगवान के पास रहने का बहुत फायदा उठा सकता है। तब से लेकर अब तक भगवान वहीं बैठे हुए हैं।
आप पूछना चाहेंगे गुरु जी?
हमें भी बता दीजिए। बता दूं आपको? नहीं, आप किसी से कहना मत। कहेंगे तो नहीं किसी से, कह देंगे तो नहीं बताऊंगा।
कहना मत, नहीं तो सबको मालूम पड़ जाएगा, वे सब वहीं पहुंच जाएंगे और भगवान जी बहुत नाराज होंगे।
वे कहेंगे कि हमने तो अपने को छिपाकर ऐसी जगह रखा था जहां नारद जी ने हमसे कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई आदमी आप तक नहीं आएगा, लोग दुनिया में चक्कर काटते रहेंगे और कोई आप तक पहुंच ही नहीं सकेगा। वह तो तेरे पास रे
मित्रों,
मैं आपको जगह बता दूं तो आप पहुंचेंगे?
नहीं पहुंचेंगे, पहुंचना भी मत, अगर वहां पहुंच जाएंगे तो भगवान जी बहुत नाराज होंगे।
जहां भगवान जी रहते हैं वह जगह मैं बताए देता हूं, आप जब चाहें उन्हें पा सकते हैं, आप जब चाहें उनसे मिल सकते हैं और जब चाहें तो बात भी हो सकती है। भगवान जी का द्वार खुला हुआ है, पर है ऐसा कि भगवान दिखाई नहीं पड़ता। वह जगह ऐसी है जो आदमी की पकड़ में नहीं आती है और पता भी नहीं चलता है। आपको बताऊं कहाँ है वह जगह?
अच्छा,
आपको बताए देता हूँ, आप किसी से मत कहना, नहीं तो और लोग पहुंच जाएंगे।
वह जगह है इंसान का दिल हृदय।
इंसान के हृदय में, दिल में भगवान बैठा हुआ है, वह कहीं बाहर नहीं है। जब कभी भी किसी को भी भगवान मिला है, अपने हृदय के भीतर मिला है, वह बाहर दुनिया में नहीं है। वह बाहर दुनिया में केवल प्रकृति है, पंचभूत हैं, जड़ पदार्थ हैं, बस और कुछ नहीं। बाहर की दुनिया में शांति नहीं है, वस्तुओं में शांति नहीं है, वस्तुओं में कोई शांति नहीं है, पदार्थों में कोई शांति नहीं है।
शांति वहां नहीं है मित्रों।
सुख सुविधाओं में शांति है? नहीं, सुख सुविधाओं में कोई शांति नहीं है।
सुख सुविधाओं में शांति रही होती तो रावण ने शांति प्राप्त कर ली होती। क्यों?
क्योंकि उसके पास बहुत सुविधाएं थी, उसके पास सोने के अंबार लगे हुए थे और उसका मकान सोने का बना हुआ था।
संतान, संतान के द्वारा अगर दुनिया में शांति मिली होती तो रावण के 1,00,000 पूत और 1,25,000 नाती अर्थात 2,25,000 थे।
2,25,000 संतान पाने के बाद में रावण जरूर सुखी हो गया होता।
मित्रों,
जिन चीजों के बारे में लोगों का यह सवाल है कि यह चीजें हमको मिल जाएं तो हम सुखी बन सकते हैं, वह वास्तव में ईमानदारी की बात है कि कोई सुख दे नहीं सकते। विद्या हमको मिल जाए, हम MA पास हो जाएं, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएं, PhD हो जाएं, नौकरी मिल जाए और हम बड़े विद्वान हो जाएं, तो हम दुनिया में शांति पा सकते हैं, यह नामुमकिन है।
विद्वान पर खोखला व्यक्ति। साथियों, रावण बहुत विद्वान था, ज्यादा पढ़ा हुआ था,
उसके पास कोई कमी नहीं थी।
कोई आदमी बलवान हो जाए, ताकतवर हो जाए तो उसे शांति मिल जाएगी, सुविधा मिल जाए तो चैन मिल जाएगा।
नहीं, न शांति मिल सकती और न चैन मिल सकता है। रावण बहुत ताकतवर था, बहुत बलवान था और उसकी कलाइयों में बहुत बल था।
वह बड़ा संपन्न था, उसके पास न विद्या की कमी थी, न पैसे की कमी थी, न ताकत की कमी थी, न पुरुषार्थ की कमी थी,
किसी चीज की कमी नहीं थी।
पर बेचारा शांति नहीं पा सका
और जब मरने का समय आया तब उसके शरीर में हजारों छेद बने हुए विद्यमान थे। जब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से यह पूछा कि महाराज, आपने जब रावण को मारा था तब आपने एक ही तीर चलाया था ना?
हाँ, हमने तो एक ही तीर चलाया था।
तो रावण के शरीर में एक ही निशान होना चाहिए, एक ही घाव होना चाहिए, लेकिन उसकी जो लाश पड़ी हुई है उसमें तो जहां तहां हजारों छेद हैं। यह कैसे हुआ?
रावण को इतने तीर किसने मारे?
इतने छेद किसने कर दिए? इतने सुराख इसमें कैसे हो गए? किस तरीके से इन सुराखों से खून बह रहा है?
आपने तो एक ही तीर मारा था। हाँ, हमने एक ही तीर मारा था।
तो ये हजारों तीर किस तरीके से लगे? रामचंद्र जी ने बताया कि ये जो हजारों छेद हैं, रावण के पाप हैं, रावण के गुनाह हैं।
रावण की कमजोरियां, रावण का घटियापन एवं रावण का कमीनापन है, जिसने कि उसके सारे शरीर में छेद कर डाले और उसका सारे का सारा व्यक्तित्व खराब कर दिया। गलत मार्ग पर चलने की परिणति।
रामायण में भी यही बात आती है कि आदमी बहुत कमजोर होता है।
आदमी का रूहानी बल, उसका चरित्र, उसकी महानता और आत्मा कमजोर हो जाए तो आदमी बहुत कमजोर हो जाता है। रावण बहुत ही बलवान था। काल को उसने अपनी पार्टी से बांध रखा था।
वह इतना जबरदस्त था कि उसने सब देवताओं को पकड़ लिया था,
सोने की लंका बनाई,
समुद्र पर काबू पाया। लेकिन एक समय रावण बहुत ही कमजोर हो गया और बहुत ही दुबला हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया।
कब?
जबकि वह सीता जी का हरण करने को गया।
सीता जी का हरण करने को बेचारे को बहुत ढोंग रचाने पड़े, भिखारी का रूप बनाना पड़ा। रावण भिखारी क्यों बना? रावण के दरवाजे पर तो अनेक भिखारी पड़े रहते थे,
उसे क्यों बनना पड़ा? और यह भी इधर उधर देख करके कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। इस तरीके से रावण चला।
रावण की दशा बहुत ही दयनीय थी। क्यों?
क्योंकि उसने गलत रास्ते पर कदम रखने शुरू किए थे।
जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही, सो दसी स्वान की नाई, इतुक चिति चला भड़िहाई, इमी कुपंत पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल्लेसा। अर्थात व्यक्ति यदि गलत रास्ते पर कदम उठाना शुरू कर देता है तो उसका तेज बल और बुद्धि सारे के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, इनका सफाया हो जाता है।
हम तो लुट गए
मित्रों।
हमारे जीवन की महानतम भूल यही है कि हमको जिस काम के लिए जीवन मिला था, ऐसा उज्ज्वल जीवन जीने के लिए मिला था, उसके बारे में हम बेखबर होते हुए चले गए।
हमने वह सारी की सारी चीजें भुला दी जिसे भगवान ने हमको जन्म के समय सौंपी थी।
हम छोटी छोटी चीजों में उलझ गए और हमारे जीवन का जो महत्व और जो लाभ मिलना चाहिए था वह न मिल सका। हम दुनिया में आकर के लुट गए, बर्बाद हो गए।
भगवान के यहाँ से हम कितनी बड़ी दौलत लेकर के आए थे, अपरिमित शक्तियों के भंडार बनकर के हम आए थे। हमारी आंखों में सूरज चांद थे, हमारे सारे शरीर में सारे के सारे देवताओं का निवास था।
शक्ति की देवी का हमारे शरीर में निवास है, गणेश जी का निवास हमारे मस्तिष्क में है और सरस्वती का निवास हमारी जिह्वा पर है। हमारे हृदय में चार मुख वाले ब्रह्मा जी, नाभि में शंकर भगवान, इन सारे के सारे देवताओं का निवास हमारे शरीर में है। देवताओं के निवास से भरा हुआ ऐसा शरीर हमको मिला, लेकिन इस देवताओं से भरे हुए शरीर का जो लाभ हमको उठाना चाहिए था, जो फल उसका लेना चाहिए था, हम वह फल लेने से वंचित रह गए।
हमारी यह छोटी सी भूल जीवन के उद्देश्य को भूला देने के संबंध में हुई।
गलत सोच बैठी रही मन में। जीवन के उद्देश्य के बारे में हमको यही याद बनी रही जो कि हमारे मोहल्ले वालों और पड़ोसियों ने कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य खाने पीने के लिए पैदा हुआ है और मनुष्य कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य इंद्रियों के लाभ और इंद्रियों की सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए पैदा हुआ है और मनुष्य नाम और यश कमाने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य अपना बड़प्पन, अपना गौरव, अपना आतंक दूसरे लोगों के ऊपर जमाने के लिए पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हमसे यही कहा, पड़ोसियों ने हमसे यही कहा और रिश्तेदारों ने हमसे यही बात कही। यह बातें हमारे दिमाग के ऊपर हावी होती गईं और पूरी तरह सवार हो गईं। हमने उसी बात को सही मान लिया और सारी जिंदगी को उसी ढंग से खर्च करना शुरू कर दिया।
एक चूक का परिणाम कितना बड़ा। मित्रों, हमारी इतनी बड़ी भूल जो कि इस चौराहे पर आकर हमको मालूम हुई, हमारी एक भूल चूक हो गई। ऐसी ही एक भूल कलिंग देश के एक राजा ने की थी। कलिंग देश का एक राजा था। एक बार उसको जलपान के समय नाश्ते के समय मधुपक दिया गया, अर्थात दही और शहद दिया गया।
दही और शहद को अच्छे तरीके से खाना चाहिए था, तमीज के साथ खाना चाहिए था, लेकिन तमीज के साथ उसने शहद नहीं खाया। इधर उधर देखता रहा, बात करता रहा और शहद खाता रहा। इस तरह शहद खाने से क्या हुआ? आधा शहद प्याले में गया, आधा खा चुका और आधा शहद जमीन पर फैल गया।
इसके बाद कलिंग राजा चला गया।
कलिंग राजा जब चला गया तो थोड़ी देर में जो शहद वहां फैल गया था, वहां मक्खियां आईं और आकर के शहद खाने लगी।
वहां बहुत सी मक्खियां मंडरा रही थी। उसी समय एक छिपकली आई और मक्खियों को खाने का अंदाज लगाने लगी। फिर एक और छिपकली आई। जब कई छिपकलियां इकट्ठी होने लगी तो एक बिल्ली आई। बिल्ली ने कहा कि ये छिपकलियां बहुत गड़बड़ करती हैं, चलो इन्हें खाना चाहिए, इनको खाने में मजा मिलेगा। बस मक्खियों को खाने के लिए छिपकलियां तैयारी करने लगी थीं और छिपकलियों को खाने के लिए बिल्ली।
बिल्ली जैसे ही उन्हें खाने के लिए आई, वैसे ही कहीं से एक कुत्ता आ गया। उसने कहा कि यह बिल्ली बहुत अच्छी है,
इसको मजा चखाना चाहिए, इसकी टांग पकड़ लेनी चाहिए। बस कुत्ता आया और उसने बिल्ली की टांग पकड़ ली।
कान पकड़ लिया और बिल्ली के बाल नोचने लगा, जब तक एक और कुत्ता आ गया और उस कुत्ते के ऊपर बिगड़ने लगा, कुत्ते से लड़ने लगा। बिल्ली तो भाग गई और कुत्तों में लड़ाई हो गई, बात बढ़ती चली गई। कुत्ते जब आपस में बहुत देर तक लड़ते रहे और घायल हो गए तो उन कुत्तों के मालिक आए।
उन्होंने आपस में कहा कि तुम्हारे कुत्ते ने हमारे कुत्ते को काटा। दूसरे ने कहा कि तुम्हारे कुत्ते ने हमारे कुत्ते को काटा।
उन्होंने कहा कि तुम्हारा कसूर है, तुमने अपने कुत्ते को बांध करके क्यों नहीं रखा। दूसरे ने भी यही कहा कि तुमने अपने कुत्ते को बांध करके क्यों नहीं रखा। दोनों में टेंशन होने लगी और आपस में मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ?
वे ब्राह्मण और ठाकुर थे।
ब्राह्मणों को पता चला कि हमारे ब्राह्मण की ठाकुरों ने पिटाई कर दी तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों की बहुत बेइज्जती हो गई, चलो ठाकुरों पर हमला करेंगे। उधर ठाकुरों ने कहा कि चलो ब्राह्मणों को ठीक करेंगे। उधर ब्राह्मणों ने कहा कि ठाकुरों का मुकाबला करेंगे,
जो होगा देखा जाएगा।
फिर दोनों में बहुत जोरदार लड़ाई हुई,
मारपीट और दंगा हो गया।
दंगा हो गया तो मोहल्ले में जो चोर और डाकू थे उन्होंने कहा कि दंगा हो रहा है, इस समय हमें बड़ा बलवा खड़ा कर देना चाहिए और जो भी माल लूटपाट में मिले उसे लेकर के भाग जाना चाहिए। बस दंगा होते ही बहुत सारे दंगाए आ गए और सारे शहर में दंगा मचाने लगे और लूटपाट करने लगे। उन्होंने कहा कि इन गांव वालों के पास क्या रखा है, सारा खजाना तो राजा के पास है,
चलो राजा के पास चलें और उसका सारे का सारा खजाना लूट कर ले आएं।
बस दंगाइयों ने राजा के खजाने पर धावा बोल दिया और राजा के खजाने में जो माल रखा था सब चुरा कर ले गए,
सोना चांदी नगीना आदि सब गायब हो गए। अब पछताया होत क्या?
राजा जो था वह बहुत दुखी हुआ और बेचारा बैठकर रोने लगा। क्या हुआ?
उन्होंने कहा कि राजा के सारे खजाने में जो लाखों रुपया रखा था दंगाई आए डकैत आए और लूट खसोट कर ले गए। फिर राजा के मंत्री आए और दूसरे लोग आए।
उन्होंने कहा कि यह दंगा कैसे हो गया, बलवा कैसे हो गया। एक एक कमेटी बैठाई गई और एक आयोग नियुक्त किया गया जो इस बात की इंक्वायरी करे कि दंगा होने की वजह क्या थी। दंगा होने की वजह जब मालूम की गई तो यह मालूम हुआ कि जो दंगा हुआ था इसलिए हुआ था कि ब्राह्मणों और ठाकुरों में लड़ाई हुई थी।
फिर पता चला कि कुत्तों के मारे लड़ाई हो गई।
फिर यह पूछा गया कि कुत्तों की लड़ाई क्यों हुई। तब पता चला कि बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ते आ गए थे इसलिए यह हुआ।
बिल्लियां कहां से आईं?
क्योंकि छिपकलियां आ गई थी और उन्होंने ऐसे गड़बड़ किया कि उन्हें पकड़ने के लिए बिल्ली आ गई।
फिर उन्होंने कहा कि अच्छा छिपकलियां कहां से आईं? उन्होंने कहा कि वहां मक्खियां भिन माइनस भिना रही थीं और उन मक्खियों के भिन भिनाने की वजह।
उन्होंने कहा राजा साहब ने जो शहद खाया था और शहद खाने में गलती कर डाली थी बस उसी की वजह से यह सारा झगड़ा हो गया।
सारा ढांचा विवेकशीलता पर टिका। मित्रों
हमारे जीवन में भी यही होता है, विवेकहीनता के कारण बिल्कुल हमारे जीवन में भी यही घटना घटित होती रहती है। राजा बड़ा बेवकूफ और विवेकहीन था क्योंकि उसने शहद संभलकर नहीं खाया।
शहद को संभलकर खाया होता तो मक्खियां क्यों आती,
बिल्ली क्यों आती, छिपकलियां क्यों आती, कुत्ते क्यों आते, दंगा क्यों होता और बलवा क्यों होता और खजाने पर हमला क्यों बोला गया होता।
छोटी सी भूल के कारण राजा अपना खजाना खो बैठा और छोटी सी हमारी भूल के कारण राजा अपना खजाना खो बैठा और छोटी सी हमारी भूल हमारे खजाने को खो बैठी। जरा सी बात थी, विवेक की बात थी।
यह इशारा भर था कि हमारे जीवन में यह ख्याल बना रहता कि हम इंसान के रूप में जीवन लेकर के इस दुनिया में आए हैं और हमको ब्राह्मण वाले जीवन को ब्राह्मण की तरीके से खर्च करना चाहिए और इसके बदले में बहुमूल्य आनंद और बहुमूल्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। इतनी सी रत्ती भर बात अगर हमारे मन में सावधानी के रूप में बनी रहती तो हमारी ये गतिविधियां कुछ अलग तरह की रहतीं और जिस तरह की गतिविधियां आज हमारी हैं उस तरह का गंदा कमीना जीवन जीने के लिए हमको मजबूर न करती।
फिर हमारी ख्वाहिशें अलग तरह की होती, फिर हमारी इच्छाएं अलग तरह की होती, फिर हमारी कामनाएं अलग तरह की होती, फिर हमारी दिशाएं अलग तरह की होती, फिर हमारे सोचने का ढंग अलग तरह का होता। आज यह सब जैसा है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता। हमारे विचार करने का ढंग काम करने का ढंग अलग तरह का होता। यह सारे का सारा ढांचा हमारी विवेकशीलता पर टिका हुआ है।
विवेकवान बनकर ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।